शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिही व सहबिही व मन इस्तन्ना बिसुन्नतिही इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिलहक्की व तवासौ बिस्सब्र। आमीन या रब्बिल आलमीन। थुम्मा अम्मा बाद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रहली सदरी वयस्सिरली अम्री वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौती बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। हमने कल तीसरा हिस्सा सूरह मुल्क का शुरू किया था, आयत नंबर 16 से शुरू हुआ था और आपको बताया था कि आयत नंबर 16 से 22 तक जो यहाँ पर आपको आयात मिलेंगी, इसमें 16, 17, 18 दो रिटोरिकल क्वेश्चन थे। उसके बाद एक 19 आयत के अंदर आपको एक स्पिरिचुअल रियलिटी बताई गई थी, जहां परिंदे की मिसाल से बहुत सी रियलिटीज बताई गई। इसके बाद फिर आयत नंबर 20 और 21 में दोबारा से रिटोरिकल क्वेश्चन है, अल्लाह ने सोचने की दावत दी है। और फिर आयत नंबर 22 में एक स्पिरिचुअल रियलिटी है। आयत नंबर 20 में अम्मन हाज़ल्लज़ी हुवा जुंदुल्लकुम यंसुरुकुम मिन दूनिर रहमान इनिल काफिरूना इल्ला फी गुरूर। या वो तुम्हारा कौन सा लश्कर है, अल्लाह पूछ रहा है, जो रहमान के मुकाबले में तुम्हारी मदद करे। काफिर नहीं है मगर सिर्फ एक धोखे में। तो हमने इस पर कल बात शुरू की थी कि अल्लाह ताला ने यहां पर सवाल किया है कि वो लोग जो अल्लाह के दीन को समझने के बाद, अल्लाह के रसूल की पुकार कान पर आने के बाद भी अपने आप को अल्लाह के दीन से दूर रखते हैं, उनके ऐसे कौन से फॉलोअर्स हैं, उनकी ऐसी कौन सी आर्मीज हैं जो उनको अल्लाह के मुकाबले में प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और ये अल्लाह वो है, ये रहमान वो है। आप देखें, अल्लाह के लिए जो पीछे नाम आया है वो रहमान और रब आया है। ये रब और रहमान वो है जिसका इंट्रोडक्शन सूरह मुल्क में बियदिहिल मुल्क कहकर दिया गया है, जिसके हाथ में पूरी डोमिनियन है, जिसके हाथ में पूरी कायनात है। उसके मुकाबले में तुम्हारे पास कौन सा ऐसा लश्कर, कौन सी ऐसी आर्मी, कौन सी ऐसी फौज है जो तुम्हें इससे बचा सकेगी। कुरैश का मसला ये था कि कुरैश अर रहमान के नाम से फेमिलियर नहीं थे, तो अल्लाह ताला ने अर रहमान के नाम ही को मेंशन करके इनको बार बार एहसास दिलाया कि अल्लाह रहीम है, अल्लाह वो इलाह है जो तुम्हारे लिए हमेशा बेहतरीन फैसले करता है। कुरैश के आसपास अहले किताब जो मौजूद थे मदीना के अंदर, उनका मसला ये था कि वो भी अर रहमान के नाम को डिस्टॉर्ट कर चुके थे। उनके लिए अल्लाह का मर्सीफुल होना एक बिल्कुल डिफरेंट फीलिंग्स में था। तो जो रहमान के साथ डिटेल और डिस्क्रिप्शन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान के जरिए दी गई वो कम्प्लीटली मुख्तलिफ थी। तो एक अल्लाह ताला ने सवाल किया है कि तुम उसके मुकाबले में आओगे अपनी आर्मी को लेकर, अपनी ख्वाहिशात को लेकर, अपने नफ्स को लेकर, अपने किबर और तकब्बुर को लेकर, अपने दोस्तों और अपने फॉलोअर्स को लेकर, जिसके हाथ में पूरी डोमिनियन है, जो मालिकुल मुल्क है, बियदिहिल मुल्क की कैटेगरी में जो आता है। फिर इसके अंदर एक और सार्केज्म है, सार्केज्म भी है और सोचने के लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट भी है। अल्लाह पूछ रहा है कि तुम उसके मुकाबले पर आओगे जो रहमान है, जो सबसे ज्यादा केयरिंग है, जो सबसे ज्यादा कंपैशनेट है, जो सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। इट विल बी अ सिली अप्रोच कि आप उससे लड़ाई करना शुरू कर दें जो आपसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है, आप उससे जंग करने खड़े हो जाएं जो असल में आपको संभालने वाला, आपका चेरिशर, आपका नरेशर, आपके लिए सब कुछ प्रोवाइड करने वाला और आपको बेहतरीन मोहब्बत देने वाला है। अगर कोई अपनी माँ से जंग करता है तो उस इंसान को अहमक कहा जाता है। रब माँ से कई गुना ज्यादा मोहब्बत करता है। जो रब से जंग करने खड़ा हो जाएगा उससे बड़ा अहमक कौन होगा। और रब से जंग करने के लिए खड़ा होने की आज प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन सूदी निज़ाम है। और यह हकीकत है कि आज के दौर में अपने आप को रिबा से बचाना, सूद से बचाना, इट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। हम औरतें ज्यादातर हाउसवाइफ्स हैं, हमें अंदाजा नहीं है। कभी मर्दों से पूछें किस कदर मुश्किल है। और जो लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं कि अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता हलाल कमाई और अपने कमाइयों को और अपने कारोबार को वो सूद से पाक करने की तरफ आ रहे हैं, जो इस वक्त वेल एस्टेब्लिश्ड इस वक्त बिजनेस स्ट्रक्चर है, उसमें मुमकिन नहीं होता जब तक कि आप अपने आप को लो प्रोफाइल ना लेकर आ जाएं। या तो आप कट डाउन करें अपने बिजनेस को, या आप अपनी फैक्ट्रीज कम करना शुरू करें, या आप अपने आप को आहिस्ता 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 कम से कम बिजनेस पर लेकर आए. इट्स रियली डिफिकल्ट. जो जितनी मेहनत करेगा, जो जितना अपने अंदर तकवा लाकर अपने आप को अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ जंग करने के लिए नहीं खड़ा करेगा, उतना इंशाल्लाह अल्लाह उसको दुनिया और आखिरत की बरकत अता फरमाएगा. तो रहमान का लफ्ज लाकर एक तरह से यहां पर हर नाफरमान का मोराल क्रश किया गया है कि अल्लाह से क्या झगड़ना जो तुमसे इतनी मोहब्बत करने वाला है. इनिल काफिरून इल्ला फी गुरूर, इनकार करने वाले असल में अटर कंफ्यूजन में है, डिसेप्शन में है. गुरूर गैन की पेश के साथ, कुरान में गरूर भी आता है गैन की जबर के साथ. ये क्या है? गैन की पेश के साथ गुरूर. गुरूर ऐसा डिसेप्शन, ऐसा धोखा होता है जो किसी की झूठी उम्मीदों की वजह से पैदा हो जाए. इनिल काफिरून इल्ला फी गुरूर, ये धोखा वो है जो इंसान शैतान की फॉल्स होप्स की वजह से खाता है. शैतान उसको फॉल्स होप दिलाता है कि जब तुम इस रास्ते पर आओगे तो दुनिया बढ़ेगी, खुशियां मिलेंगी, बहुत कुछ तुम्हारे लिए आसानियां हो जाएंगी. तो गुरूर ऐसा धोखा जो फॉल्स होप्स की वजह से आए. जबकि याद रखें, जब अल्लाह पीछे अपना नाम रहमान मेंशन करता है तो अल्लाह ताला असल में इंसान की सारी उम्मीद अपने से जोड़ना चाहता है. अल्लाह हमारी उम्मीदें जैसी पूरी कर सकता है, याद रखें कोई इंसान पूरी नहीं कर सकता, जिसका तवक्कुल अल्लाह पर रहमान पर हो जाता है. और सूरह मुल्क हमें समझाना यही चाह रही है, हमारे अंदर ऐसा खौफ पैदा करना चाह रही है जो खौफ हमें प्रैक्टिकली मुसलमान बना दे. और प्रैक्टिकली मुसलमान बनने का वादा, तरीका, मेथडोलॉजी जो यहां बताई गई है आयात के जरिए, वो ये है कि आपकी सारी उम्मीद, टोटल ट्रस्ट, टोटल रजा सिर्फ अल्लाह पर हो. जब आप अल्लाह पर उम्मीद लगाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि अब आप लोगों के साथ जो है वो ड्रैगन बन के फिरते रहते हैं, मुंह से आग निकलती रहती है, नाक से हीट निकलती रहती है, ऐसा नहीं होता. जब आप अल्लाह के साथ उम्मीद लगा लेते हैं, आप इंसानों को इंसान समझने लग जाते हैं. आपको यकीन हो जाता है कि अल्लाह से बढ़कर मेरी उम्मीद कोई पूरी नहीं कर सकता, अल्लाह से बढ़कर मेरी एक्सपेक्टेशन पर कोई पूरा उतर नहीं सकता, ये सब इंसान है, ये गलती करेंगे. तो रहमान अपने से जोड़ना चाह रहा है, रहमान चाह रहा है हम फॉल्स होप्स में से निकलें. बाज़ोकात बीवियां अपने शोहरों की किसी किस्म की कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं, वो कहती हैं इतने मोहब्बत करने वाले इन्होंने मेरे साथ ये ऐसे कर कैसे दिया. बाज़ोकात माँ बाप औलाद की गलती बर्दाश्त नहीं कर पाते कि इतना फर्मा बरदार बेटा इसने ऐसे बोल कैसे दिया. बाज़ोकात हर रिश्ते के साथ जो मोहब्बत करने वाला रिश्ता है, हम ये उम्मीद इतनी लगा लेते हैं कि हमसे बर्दाश्त नहीं होता. अगर हमने अपनी जिंदगी में टॉप प्रायोरिटी पर रहमान को रखा होगा तो हम लोगों के साथ कभी ऐसी उम्मीद का शिकार नहीं होंगे कि हम उनसे उम्मीद लगाते लगाते अपने रब को भूल जाएं. और एक बात आप देख लीजिएगा, जब आप लोगों से उम्मीदें लगाते हैं और लोग आपकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरते, 99% इंसान लोगों से बदगुमान कम और अल्लाह से बदगुमान ज्यादा होता है. महसूस कीजिएगा, आपको गुस्सा लोगों पर कम अल्लाह पर ज्यादा आने लग जाता है. आप कहती हैं अल्लाह मेरे साथ ऐसे कर कैसे सकता है, मैं तो नमाज पढ़ती हूँ, मैं तो रोजा रखती हूँ, मैं तो कुरान की क्लास में जाती हूँ, अल्लाह ने सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, वाई मी, मैं ही क्यों. और आप देखें शैतान ने आपको कैसा धोखे का, डिसेप्शन का शिकार किया. उसने आपको लोगों से झूठी उम्मीदें दिलवाई और जिससे आपको सारी उम्मीद बांधनी चाहिए थी उससे आपको बदगुमान कर दिया. इसको कहते हैं गुरूर. तो अल्लाह ताला ने कहा कि अगर तुम रहमान को जिंदगी में छोड़ दोगे और अपने दूसरे लश्करों को फोकस में रखोगे तो तुम्हारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ गुस्से का शिकार हो जाएगी. आप देखें जो लोग दीन से दूर होते हैं, जो लोग लोगों से एक्सपेक्टेशन ज्यादा रखते हैं, उन लोगों का बीपी ज्यादा हाई रहता है, उनको गुस्सा ज्यादा आता है, उनको हर बात पर गुस्सा आता है, वो ईगोइस्टिक ज्यादा हो जाते हैं. जितने दुनिया में एग्नोस्टिक लोग हैं, अगर आप उनकी बातें सुने, अगर आप उनकी किताबें पढ़ें, अगर आप उनके इंटरव्यू सुने, अगर कभी आपको उनसे बात करनी पड़ जाए, इतने ईगोइस्टिक होते हैं, इतने गुस्से वाले होते हैं कि उनके अंदर बर्दाश्त बहुत कम होती है. जिसके अंदर दीन का एसेंस आता जाएगा, जिसके अंदर रसूलुल्लाह का इखलाक आता जाएगा, उसके अंदर नरमी आती जाएगी, उसके अंदर बर्दाश्त आती जाएगी. तो एक सवाल यह है कि अल्लाह के अलावा, रहमान के अलावा तुम्हारा कौन सपोर्टर है जो तुम्हें रहमान से ज्यादा महफूज रख सकता है, कौन है जो तुम्हारी रहमान से ज्यादा उम्मीदें पूरी कर सकता है. दूसरा सवाल आयत नंबर 21 में आया, अमन हाज़ल्लज़ी या रज़ुकुकुम इन अमसका रिज़्क़ा बल लज्जू फी उतुविन व नुफूर, या ऐसा कौन है जो तुम्हें रिस्क दे अगर वो अपना रिस्क रोक ले, बल लज्जू फी उतुविन व नफूर, असल में हकीकत यह है कि तुम नफरत में झगड़ालू और स्टबन हो रहे हो, बल लज्जू फी उतुविन व नफूर। अल्लाह ताला ने यहां मेंशन कर दिया कि इंसान समझता है कि कोई बात नहीं, अगर मैंने अल्लाह की इबादत ना की, इतनी नेमतें भी तो दुनिया में मिली। बाज़ औक़ात बाज़ लोगों को नेमतें मिलना धोखे का शिकार कर देता है, इसलिए कि एक तरफ जिंदगी में अल्लाह की नाफरमानियां होती हैं, दूसरी तरफ रिस्क बरस रहा होता है। बाज़ औक़ात ये दूसरे लोगों के लिए भी चीज इम्तिहान बन जाती है। एक दो लोग हैं, एक अल्लाह की मेहनत, अल्लाह की लगन में मेहनत करता है, अल्लाह के दीन पर अमल करने के लिए कोशिश करता है, रिस्क हलाल कमाने में दिन रात एक करता है, लेकिन उसको उतना माल नहीं मिलता, और वो दूसरे इंसान को देखता है जो हराम कमाता है, जो बगैर किसी स्टैंडर्ड के, शरिया स्टैंडर्ड के जॉब करता है या बिजनेस करता है, और उसके ऊपर रिस्क उबल रहा है। तो ये जो मेहनत कर रहा होता है अल्लाह के रास्ते में, बाज़ुकात इसके कदम हिलना शुरू हो जाते हैं। ये कहता है मैं तो अल्लाह की इबादत कर रहा हूं, तो मुझे क्यों नहीं ये बरकत मिल रही। और जिसको ये मिल रहा होता है नाफरमानियों के साथ, ये उसके लिए भी इम्तिहान बन जाता है। याद रखें एक उसूल उलमा देते हैं, अल्लाह की नाफरमानी जिंदगी का हिस्सा हो, यानी गुनाह एज अ लाइफस्टाइल शामिल हो, और रिस्क बरस रहा हो, तो ये अल्लाह की तरफ से ढील है, इस्तदराज है, अल्लाह ने छोड़ दिया ऐसे बंदे को। अगर दुनिया में जिंदगी में गुनाह मौजूद हैं और रिस्क बरस रहा है, तो ये अल्लाह की तरफ से इस्तदराज है। अगर दुनिया में अल्लाह के दीन पर चलने की लगन और कोशिश है लेकिन रिस्क में तंगी है, अल्लाह बंदे को आजमा रहा है, इम्तिहान है, नेमत को कम करके अल्लाह आजमा रहा है। एक इंसान नेक है, अल्लाह के रास्ते पर चलने की कोशिश करता है, रिस्क हलाल के जरिए अपने घर वालों को चलाने की कोशिश करता है, और अल्लाह रिस्क दे रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये नहीं कि हमारा माइंडसेट बन जाए कि नेक इंसान, मुत्तकी इंसान पैसे वाला हो ही नहीं सकता, ये माइंडसेट भी नहीं बनना चाहिए। वी नीड टू मेंटेन द बैलेंस। हम में से हर एक को अपनी फिक्र करनी है, मैंने अपनी कब्र में जाना है, आपने अपनी कब्र में जाना है, हमने अपने अपने आप को अल्लाह के सामने हिसाब देने के लिए खड़े करना है। तो अपने आप को अल्लाह के सामने जब हिसाब देने खड़े करने रखेंगे, तो हम देख लें कि हम कहां जिंदगी में डिफाइंस पर हैं। क्या हम भी कभी कभी जिंदगी में गुनाहों का लाइफस्टाइल अडॉप्ट करते हैं और उसके बाद अल्लाह को भूल जाते हैं? तो ये सवाल हमसे भी है कि जिस रब ने तुमको रिस्क दिया है, जिसकी सस्टेनेंस पर तुम्हारा जिस्म इतनी ताकत और स्टेमिना रखता है, जिसकी दी हुई ताकत से तुम दो पैरों पर चलते हो, और उन दो पैरों पर चलकर तुम किसी म्यूजिक कॉन्सर्ट में खड़े हो जाते हो और फिर बंदरों वाली जो भी हरकतें करते हो, उसी रब के दिए हुए रिस्क से जो ताकत मिली थी उसी से कर रहे हो ना, तो भूल क्यों जाते हो कि वो किसी वक्त भी पकड़ सकता है। पॉलिटिकल साइंस के दो उसूल, बल्कि एक ही उसूल है पॉलिटिकल साइंस का, जिसको कहते हैं पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। दीज आर द टू बेसिक थिंग टू मेक द फाउंडेशन ऑफ एनी सोसाइटी। पॉलिटिकल साइंस सोशियोलॉजी में दिस इज द मेन रूल। आयत नंबर 20 और 21 में आपको ये दोनों रूल्स खूबसूरती से कनेक्ट होते हुए मिलते हैं। पीस मेंटेन नहीं हो सकता अगर जिंदगी में तौहीद ना हो, प्रॉस्पेरिटी नहीं आ सकती अगर रब की इताअत ना हो। वो होगा, वो मिराज होगा, धोखा होगा। आप देखें पिछली आयत में आर्मी की बात थी, पॉलिटिकल साइंस के उसूल के मुताबिक पीस मेंटेन करने के लिए मुल्क हमेशा से आर्मीज अपनी ग्रो करते हैं, इसलिए कि हमारी जितनी बड़ी आर्मी होगी उतना दुश्मन मुल्क के ऊपर एक रोब रहेगा और वो हम पर हमला नहीं करेंगे। तो अल्लाह ने कहा ठीक है चलो, आर्मी तुम्हारी बड़ी हो गई, तुमने अपनी आर्मी बना ली और तुम्हें लगता है कि हम अपनी आर्मी से बड़े पीसफुल हो गए। तो जिस आर्मी को तुम खाना खिलाते हो, रिस्क खिलाते हो, सस्टेनेंस देते हो, वो किसकी दी हुई है? वो भी तो अल्लाह की दी हुई है। तो जहां आप मुल्कों के बेसिस पर ये सोच लें, प्रॉस्पेरिटी, सर्वाइवल, आर्मी का रिस्क, ये सब कनेक्टेड है, वहां इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी सोच लें। अल्लाह की नाफरमानियों के बावजूद अगर हम जिंदा हैं, सेहतमंद हैं, अपने कानों से सुन सकते हैं और अपनी आंखों से देख सकते हैं, अपनी जुबान से बोल सकते हैं और अपने दिमाग से कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं, तो ये अल्लाह की तरफ से हमें इस वक्त छूट मिली हुई है, मोहलत मिली हुई है। ये रिस्क अल्लाह का है। इन अमसका रिस्क, कल की बात याद है, रिस्क हू, किसका रिस्क है? उसी का है, वो चाहेगा तो खींच लेगा, है ही उसी का। क्या करेंगे अगर वो खींच लेगा? तो जगाया गया है रिटोरिकल क्वेश्चन के जरिए कि अल्लाह की नाफरमानियों में अपनी जिंदगियों को नाफरमानियों में मत गुजारो। अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं उनको अल्लाह की नाफरमानी में इस्तेमाल ना करो। एंड इट्स अ हाई नोट, हम सब के लिए जो हम अपने साथ हाथ में पकड़ कर लेकर जाएं, अपनी आंखें, कान, अपने हाथ और अपनी जुबान, इनकी खास हिफाजत कीजिए। जब आप अपने कानों की, अपनी आंखों की और अपनी जुबान और अपने हाथों की हिफाजत करते हैं, आपकी अकल की हिफाजत ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाती है। मत सुने अपने कानों से वो चीज जिससे शरीयत ने मना किया है, मत देखें वो चीज जिससे शरीयत ने रोका है। कितना मुश्किल है अगर आज से हम फैसला कर लें कि हम कोई मूवीज नहीं देखेंगे। मुश्किल है? हाँ मुश्किल है। जिसके लिए मुश्किल नहीं है, प्लीज टेक अ स्टेप फॉरवर्ड। जिसके लिए मुश्किल है, दुआ करें। मैं उसको भी दुआ दे रही हूँ, हम सब भी उसको दुआ दें। जिसके लिए मुश्किल है, कोशिश कीजिए। कम कर सकते हैं, रिड्यूस इट। अगर आप दिन में 6 घंटे देखती थी, अब 3 घंटे कर दीजिए। और टारगेट दें अपने आप को कि जल्द से जल्द मैं 3 घंटे को 1 घंटे पर ले आऊंगी, एंड फाइनली अपनी जिंदगी में से इस चीज को निकाल दूंगी। आपकी ये जितनी यूजलेस एक्टिविटीज हैं, चाहे वो म्यूजिक है, चाहे वो सारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, चाहे वो मूवीज हैं या ड्रामे हैं या मॉर्निंग शोज हैं, इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। आप कुरान की क्लास के बाद टीवी खोलकर बैठे और किसी भी मॉर्निंग शो का बैठ को देखना शुरू करें, आपको लगेगा दीज आर पैथेटिक प्रोग्राम्स। ये कर क्या रहे हैं, ये हो क्या रहा है? अल्लाह उनको हिदायत दे, इतना प्राइम टाइम है उनके हाथ में। कितनी अच्छी बातें दुनिया को बता सकते हैं, मुल्क को बता सकते हैं। तो अपने कानों की, अपनी आंखों की, अपनी जुबान की और अपने हाथों की हिफाजत कीजिए। ये अल्लाह का रिस्क है, अल्लाह किसी वक्त भी रोक सकता है, अल्लाह किसी वक्त भी हमसे जो है वो इस चीज को छीन सकता है। अल्लाह ने पिछली आयत में हमें कहा था, मा युमसिकुहुन्ना इल्ला रहमान, परिंदों को आसमान पर किसी ने नहीं थामा हुआ सिवाय अर रहमान के। और वहां पैराबल था इंसान के लिए भी। हम डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट मौत में चले जाते हैं। अल्लाह हमें हर सुबह जिंदगी देता है, तो जिंदगी अल्लाह देता है, मौत से अल्लाह ने बचाया हुआ है, रिस्क अल्लाह देता है, सस्टेनेंस अल्लाह देता है, चलने की, बोलने की, सुनने की, देखने की ताकत अल्लाह देता है। तो फिर इंसान इस रब से दूर क्यों भागता है? वजह बता दे, बल लज्जू फी उतुविन व नुफूर। यह है नाफरमान का माइंडसेट। पीछे सूरत में पहले हिस्से में याद है, वहां आया था कि जब फरिश्ते पूछेंगे कि तुम्हारे पास कोई नजीर नहीं आया था, तो कहेंगे हाँ आया था। मसला क्या था हमारा? हमने सुना नहीं और अकल से काम नहीं लिया। अब इस आयत में मुफस्सरीन कहते हैं, आयत नंबर 21 में उनके ना सुनने की रीजन बताई गई है। सुनते क्यों नहीं थे, सुन क्यों नहीं पाते थे? क्या बहरे थे? नहीं, लज्जू, लुजाज का शिकार थे। पहली चीज, लुजाज कहा जाता है एक्सट्रीमली झगड़ालू, जिसको आप कहते हैं ना बहुत हाइपर होकर बात करने वाला। बास लोग होते हैं जिनको आप उनकी गलती बहुत मोहब्बत से और बहुत पोलाइटली भी अगर पिन पॉइंट करें, वो लिटरली एक्सप्लोड हो जाते हैं। बास लोग होते हैं जिनके साथ आपको मालूम होता है कि मैं इख्तलाफ रखते हुए इनसे बात नहीं कर सकती, दे विल जस्ट बर्स्ट अप। बास लोगों के साथ आप गुफ्तगू नहीं कर पाते इसलिए कि उनके अंदर बर्दाश्त होती नहीं है। और ये सामने वाले को, इनके पास दलाइल नहीं होते। लुजाज जो कैटेगरी अरबी जुबान में आता है, जिसके लिए यहां पर लज्जू आया है, फेल, लज्जू का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो इतना आर्ग्यूमेंटेटिव है, इतना आर्ग्यूमेंटेटिव है कि दलील नहीं होती इसके पास। ये सामने वाले को अपनी आवाज की ऊंचाई और हाई पिच से कंट्रोल करता है। अगर हमें लगता है कि हम किसी की अच्छी बात सुनकर एकदम से हाई पिच्ड हो जाते हैं, अगर हमें लगता है कि जब हमें अम्मा अच्छी बात बताने लगती हैं, आपने कभी नोट किया है बच्चों को आप अच्छी बातें बताते हैं, बच्चे पहले ही जुमले पर अम्मा के इतना हाइपर होके बोलते हैं, अम्मा कहती हैं हेलो तुम्हें क्या हो गया, क्या रेडबुल पी कर आए हो? एकदम से बच्चे ऊंचे बोलना शुरू कर देते हैं। दिस इज द कैटेगरी ऑफ लुजाज। और अगर इसको रोका ना जाए टेंडेंसी को, तो फिर ये पर्सनैलिटी आगे जाकर ऐसी पर्सनैलिटी बन जाती है जिसमें इंसान आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाता है। और सामने वाले को शट अप कराने का तरीका क्या होता है? दलील नहीं होती, सही बात नहीं होती, आवाज की टोन और आवाज की पिच होती है। तो ये सुनते क्यों नहीं थे? ये सुनना चाहते ही नहीं थे। कोई सुनाना शुरू करता था, कोई अच्छी बात बताना शुरू करता था, ये लाउड होकर, शाउट करके उसको चुप करा दिया करते थे। अच्छा अच्छा बस दीन की बात करने की जरूरत नहीं है, अच्छा अच्छा बस जस्ट चेंज द टॉपिक, अच्छा अच्छा बस लेक्चर मत स्टार्ट हो जाए दोबारा से। ये अंदाज, दिस इज लुजाज, लज्जू इसके लिए आया है। एक और कैटेगरी, एक और मीनिंग इस लज्जू के अंदर आते हैं जो स्कॉलर्स मेंशन करते हैं, वो ये कि ये इंसान का एक ऐसा आर्ग्यूमेंटेटिव नेचर होता है लुजाज का, जिसके अंदर इंसान अपनी गलती को मानने के बावजूद एडमिट नहीं करता। इसलिए तो ये सुनते नहीं थे। कुरैश के ऐसे बहुत से लोग थे जो दिल में समझ गए थे ये कलाम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। जब ही तो अबू जहल भी स्नीक करता था रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवार के पास जाके मक्का में और सुना करता था, इसलिए कि उसको उस कलाम में हलावत मिलती थी, तासीर मिलती थी, लेकिन अपनी ट्राइबल एलिजेंस की वजह से एक्सेप्ट नहीं कर सका। दिस इज लुजाज। गलती मानी दिल के अंदर, जुबान ने एक्सेप्ट नहीं किया। ये है लुजाज की कैटेगरी। और फिर ऐसा इंसान सुनने को तैयार नहीं होता, इसलिए कि फिर ऐसा इंसान आउट ऑफ प्राइड अपनी पोजीशन नहीं छोड़ता। इसलिए लुजाज वाले इंसान के अंदर जो तीसरा कंपोनेंट आपको नजर आएगा वो है उनका इगोइस्टिक होना, निहायत मुतकब्बिर। मुतकब्बिर इंसान होंगे जो जहन्नुम में पहुंचेंगे। मुतकब्बिर इंसानों को यहां एड्रेस किया गया है। ये सुनते क्यों नहीं थे? एरोगेंट थे। ये सुनते क्यों नहीं थे? आर्ग्यूमेंटेटिव थे। ये सुनते क्यों नहीं थे? ये गलती को मानने के बावजूद अपनी पोजीशन को छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए कि वो इनके लिए इंसल्टिंग होता अपनी पोजीशन, अपनी राय से वापस जाना। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ये अगर अल्लाह इनका रिस्क रोक ले तो कहां से रिस्क लेकर आएंगे। असल में बल लज्जू, असल में ये लुजाज का शिकार है। ये अपने ईमान को छुपाते फिरते हैं, ये इगोइस्टिक हैं। और किसका शिकार है? फी उतूविन। क्यों छुपाते हैं? उतूव कहते हैं अतजावज अनिल हद, बाउंड्री क्रॉस करते रहना। इनके अंदर अपनी ख्वाहिशात की बाउंड्रीज हर वक्त क्रॉस होती रहती है। देखें, ख्वाहिशात अल्लाह ने इंसानों के अंदर डाली हैं, अल्लाह ने इंसानों को ख्वाहिशात दी हैं, चाहे दुनिया की मोहब्बत हो किसी लेवल पर जहां तक इंसान उसको इस्तेमाल करे, चाहे वो एक दूसरे की मोहब्बत हो, चाहे रिश्तों की मोहब्बत हो, लेकिन उसके अंदर तजावुज अनिल हद अगर नहीं है तो वो सारी मोहब्बतें, वो सारी ख्वाहिशात ठीक हैं। ये जो इगोइस्टिक इंसान है जो आखिरत में जहन्नम में पहुंच जाएगा, इसका ईगो इतना बड़ा है कि यह हमेशा हदें क्रॉस करता है अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए। बस मेरी मर्जी, मुझे ये चीज अभी चाहिए। दिस इज अतूव। हर वक्त बाउंड्रीज क्रॉस करते रहना, हर वक्त हुदूद तोड़ते रहना। वह नुफूर, नुफूर नफरत के साथ फरार होना, दीन की बात सुनकर रिवल्जन आना और फिर रिवल्जन के साथ वहां से दूर हो जाना। आई जस्ट कांट स्टैंड विद दीज लेडीज, बुरखे वाली, ये वाला माइंड सेट। बास खवातीन किसी गैदरिंग में आती हैं, अब वो बेचारी गैदरिंग में आई, 50 औरतें बैठी हैं जिसमें से 48 ने अबाया पहना हुआ है, खुद उन्होंने पहना हुआ नहीं है। अब वो ढूंढकर उस 49 के पास जाके बैठते हैं जिसने अबाया नहीं पहना होता। क्यों? कंफर्टेबल फीलिंग्स नहीं होती। जब इंसान अपने अंदर अपने जमीर को मार देता है, और हर मुसलमान औरत, आप दुनिया में तमाम मुसलमान औरतों को इस वक्त जनरली अगर देखें, जनरली हर मुसलमान औरत जानती है हिजाब इज पार्ट ऑफ इस्लाम। जो नहीं करती उसके दिल के अंदर अपना गिल्ट होता जरूर है, और वो गिल्ट मुबारक होता है जब तक वो गिल्ट अंदर से आता रहेगा। लेकिन ये गिल्ट हर वक्त नहीं आता है। हिदायत वो गयूर मेहमान है जो एक दफा दरवाजा खटखटाती है, दूसरी दफा खटखटाती है, तीसरी दफा आप नहीं खोलेंगी वो चली जाती है। बार बार हिदायत नहीं मिलती है। दिल सख्त हो जाते हैं, दिल बंद हो जाते हैं, दिल के ताले ऐसे जंग जदा हो जाते हैं कि फिर वो खोले नहीं चाहते हैं। तो ये क्या है? ये जो यहां पर लफ्ज आया नुफूर, नफरत से फरार हो जाना, दीन की बातों से नफरत होना, दीन वालों से नफरत होना, दीन के अमल में आगे बढ़ने से एकदम से रिवल्जन आना। ये क्या एक्सट्रीमिज्म है? ये क्या हर चीज पर बैन लगाते रहते हैं? ये क्या हर चीज को कहते रहते हैं अन इस्लामिक, अन इस्लामिक, अन इस्लामिक? ये है नुफूर। ये माइंडसेट है उस इंसान का जो जहन्नुम के मुंह पर खड़ा होकर फरिश्ते के सवाल पर जब जवाब देगा, जब फरिश्ता पूछेगा क्या कोई डराने वाला नहीं आया था, वो कहेगा आएगा, आया था, हमने सुना नहीं और अकल से काम नहीं लिया। वजह यहां बताई गई है आयत नंबर 21 में, इसलिए कि उनमें लुजाज था, उतूफ था اور نافرمان تھے. اس میں سکالرز کہتے ہیں اس میں تصویر ہے اس انسان کی جس انسان کو دنیا میں بے تحاشا نعمتیں ملی, لجاج ہو, حد سے بڑھنا ہو, نفرت سے دین سے فرار ہونا ہو. مفسرون کے مطابق یہ کوالٹی زیادہ تر, یہ کیفیت زیادہ تر, یہ کریکٹرسٹک زیادہ تر نعمتوں والوں میں آتی ہے, جن کے اوپر نعمتیں برس رہی ہوتی ہیں وہ زیادہ تر اس کیفیت کا شکار ہوتے ہیں. تو اگر ہمیں اللہ نے نعمتیں دی ہیں, اللہ نے ہمیں بلیسنگز کے اندر رکھا ہے, اللہ نے آپ کی اور میرے لیے زندگی میں بہت سی آسانیاں پیدا کی ہیں, ہمیں ایکسٹرا کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. ورنہ یہاں تصویر ہے کہ اس انسان کی جس نے اپنے آپ کو ہمبل نہیں کیا. اگر کوئی ایسا انسان ہے زندگی میں, ابھی بھی ہم سوچ لیں, اور آپ قریش میں بھی سوچ سکتے ہیں, جتنے بھی سٹبن قریش تھے, جب مشکل آتی تھی, جب کوئی آفت آتی تھی تو کیا محمد کے رب کو پکارتے تھے؟ جب کوئی آفت آتی تھی, سورہ عنکبوت میں آپ پڑھتی ہیں, اگر آپ نہیں پڑھی تو آپ جا کر پڑھیے گا, آخری آیات, آخری رکو, انہی قریش کو, مکی صورت ہے, قریش کو کہا گیا ہے کہ جب تم سمندر کے سفر پر ہوتے ہو اور جب وہاں طوفان آ جاتا ہے تب تم خدا کو پکارتے ہو اور خالص کرتے ہوئے خدا کو پکارتے ہو. ہر وہ انسان جو نعمتوں میں انڈلج ہے, نعمتوں کو انجوائے کر رہا ہے, رزق کو انجوائے کر رہا ہے, لیکن رحمان کو بھولا ہوا ہے, ایک رسی کے کھینچنے کی دیر ہوتی ہے, رب تو اس کو بھی یاد آتا ہے. جب مشکل ہٹ جاتی ہے پھر بیک ٹو اسکوائر ون, ان ایون لائف سٹائل. یہ تصویر ہے ان ایون لائف سٹائل کی, اور زیادہ تر مسلمان ہم ایسے ہی ہیں. جنرلی اللہ کو بھولے رہتے ہیں, پک اینڈ چوز شریعت میں کرتے ہیں, زندگی کے ہر ایسپیکٹ میں توحید نظر نہیں آتی. جب مشکل آتی ہے اللہ سے وعدے کرتے ہیں, اللہ یہ مشکل ٹال دیں, میں اپنی پوری زندگی توحید پر گزاروں گی, میں کبھی کوئی فرض نہیں چھوڑوں گی, میں کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کروں گی. اللہ اپنے بندے کی اس دعا پر, رحمان ہے نا, مشکل ٹال دیتا ہے, اور بندہ کیا کرتا ہے, اپنے سارے وعدے بھول جاتا ہے, ان ایون لائف سٹائل. تو اب وہ اسپرچل ریالٹی آیت نمبر 22 میں آ رہی ہے, جو اس ان ایون لائف سٹائل کی گرافک تصویر ہے, اور خوبصورت الفاظ ہیں, اتنے خوبصورت الفاظ ہیں کہ میرا دل چاہ رہا تھا میں یہیں پہ آج سورت روک دوں, پھر میں نے کہا نہیں, میں نے فوزیہ سے کہا تھا میں سورہ ملک کمپلیٹ کراؤں گی تو میں کمپلیٹ کرا دیتی ہوں. اٹس اے بیوٹیفل بیوٹیفل آیا, اس کے اندر اتنے سبق ہیں, اور یہ ہماری زندگیوں سے بہت ملتی ہے. آیت نمبر 22 میں سورت کا تیسرا حصہ مکمل ہو رہا ہے, اور وہ اسپرچل ریالٹی آ رہی ہے دو ریٹوریکل کوشچنس کے بعد, جو ہماری زندگی میں بہت اچھی طرح سے ریپلیس ہو سکتی ہے اگر ہم اپنے آپ کو توحید پر لے کر آ جائیں اور اپنا اصلاح کا فیکٹر اپنے سامنے رکھیں. آفا مئی یمشی مکبن علا وجہ احدا ام مئی یمشی سوین علا صراط مستقیم. آفا مئی یمشی مکبن علا وجہ, کیا وہ جو چہرے کے بل چلتا ہے, الفاظ سنے, کیا وہ جو چہرے کے بل چلتا ہے, احدا, وہ ہدایت پر ہے, وہ سیدھا چل رہا ہے, امن یمشی سوین علی صراط مستقیم, یا وہ جو سیدھے راستے پر چل رہا ہے. یہ مکبن کا لفظ ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا, یاد ہے, فم شو فی منا کی بیہا, روٹ ورڈ وہی ہے. مکبن کہتے ہیں اتنا جھک کر چلنا, مکبن اتنا جھکنا کہ آلموسٹ زمین کو ٹچ کرنا. مکبن ایک پوسچر ہے, باڈی پوسچر, اتنا جھک جانا کہ زمین کو ٹچ کرنا. اللہ نے یہ کہا ہے یمشی, چلتا کیسے ہے, کیفیت کیا ہوتی ہے, مکبن. اب مکبن کے میننگ کو ذہن میں رکھیں, اتنا جھک جانا, اور مکبن کے بعد